国国际广播电台。
耶 ，China Radio International 嘿。
यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीन का तिब्बत न्यूज फोकस प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा पश्चिम की तीर्थ यात्रा। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। विभिन्न देशों के साथ मिलकर वैज्ञानिक और तकनीकी सृजन को बढ़ाने को तैयार है चीन। चीन में राष्ट्रीय एकीकृत बाजार के निर्माण में बड़ी प्रगति और कुनो नेशनल पार्क में दो और चीता शावकों की मौत। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 25 मई को साल 2023 चुंगक्वांचुन मंच को बधाई पत्र भेजकर कहा कि चीन पारस्परिक लाभ और साझी जीत की खुली रणनीति पर अटल रहेगा और विश्व के विभिन्न देशों के साथ मिलकर वैज्ञानिक और तकनीकी सृजन को बढ़ाने को तैयार है ताकि विज्ञान और तकनीक बेहतर ढंग से विभिन्न देशों की जनता की सेवा करे। उन्होंने कहा कि नए दौर की वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति और व्यावसायिक परिवर्तन तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानव को समान विकास की समस्या का समाधान करने की ज़रूरत है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि पेचिंग को वैज्ञानिक और तकनीकी सृजन को बढ़ाकर अग्रसर होना चाहिए। साल 2023 चुंगक्वांचुन मंच 25 मई को पेचिंग में उद्घाटित हुआ, जिसका मुख्य विषय खुलेपन और सहयोग से भविष्य साझा करना है। यह मंच चीनी विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग, पेचिंग म्युनिसिपल सरकार आदि विभागों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। उधर 2023 चुंगक्वांचुन मंच के उद्घाटन समारोह में पेचिंग अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र के निर्माण में 10 प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां जारी की गई, जिसमें ब्लॉकचेन, पुनर्योजी चिकित्सा और पेचिंग में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी संगठनों की लैंडिंग शामिल हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोजन ईंधन सेल एसोसिएशन, विश्व रोबोटिक्स सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय कुशल विनिर्माण गठबंधन, एशियाई सिमुलेशन गठबंधन जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संगठन लगातार पेचिंग में आए हैं। पेचिंग छावयांग जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन मुख्यालय सभा क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा ताकि अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जमीन पर आकर्षित किया जा सके। उधर अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संगठनों के कई प्रमुख प्रतिनिधियों ने साल 2023 चुंगक्वांचुन मंच के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में चीन में मिला प्रौद्योगिकी विकास विश्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार और खुले सहयोग के लिए योगदान है। उन्होंने चीन के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग मजबूत करने की इच्छा जताई है। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन के महानिदेशक डेरेन थांग ने कहा कि हाल के वर्षों में चीन ने बौद्धिक संपदा अधिकार में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। चीन अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट सहयोग संधि प्रणाली का नंबर एक उपयोगकर्ता बन गया है। पिछले साल चीन ने 70,000 अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का आवेदन किया, जो 10 साल पहले की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अध्यक्ष सैफर रहमान ने कहा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। चीन के समर्थन से इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स ने अनवरत विकास के लिए स्वच्छ ऊर्जा का समाधान पेश किया है। चीन विश्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग में और अधिक योगदान प्रदान करेगा। उधर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंस पार्क्स एंड एरियाज ऑफ इनोवेशन के CEO ने कहा कि अनवरत भविष्य साकार करने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। उधर चीनी राजकीय कराधान महाब्यूरो के संबंधित अधिकारी ने 26 मई को आयोजित नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि टैक्स बिग डेटा की दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रीय एकीकृत बाजार के निर्माण में बड़ी प्रगति हासिल हुई है। टैक्स बिग डेटा के विश्लेषण में साल 2017 से अब तक राष्ट्रीय एकीकृत बाजार के निर्माण में 3 विशेषताएँ सामने आई हैं। पहली, अंतर प्रांतीय व्यापार का जुड़ाव मजबूत हुआ है। साल 2017 से 2022 तक अंतर प्रांतीय व्यापार की सालाना वृद्धि दर 12.8% रही है और सभी व्यापार में इसका अनुपात 38.2% से बढ़कर 39.8% पहुंचा है। दूसरी विशेषता है कि नवाचार और सूचना व्यापार में इजाफा हुआ है। साल 2017 से 2022 तक प्रौद्योगिकी सेवा की अंतर प्रांतीय बिक्री की सालाना वृद्धि दर 28% रही है। वहीं सूचना सेवा की अंतर प्रांतीय बिक्री की सालाना वृद्धि दर 22% पहुंची है। तीसरी विशेषता यह है कि राष्ट्रीय एकीकृत बाजार के निर्माण का महत्वपूर्ण समर्थन होने के नाते परिवहन और रसद के समर्थन की भूमिका स्पष्ट तौर पर आधुनिक बड़ी है। आधुनिक परिवहन और रसद प्रणाली धीरे धीरे स्थापित हो चुकी है। उधर चीनी राष्ट्रीय जल नेटवर्क निर्माण योजना रूपरेखा 25 मई को औपचारिक तौर पर जारी की गई, जिसमें चीन के राष्ट्रीय जल नेटवर्क के लेआउट, संरचना, कार्य और सिस्टम एकीकरण के लिए एक शीर्ष स्तरीय डिजाइन तैयार हुआ है। चीनी राष्ट्रीय जल नेटवर्क प्राकृतिक नदियों और झीलों के आधार पर स्मार्ट नियंत्रण के माध्यम से एक व्यापक प्रणाली है, जो जल संसाधनों के आवंटन, बाढ़ नियंत्रण और आपदा की रोकथाम व जल पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा जैसे कार्यों को एकीकृत करती है। इस योजना रूपरेखा में राष्ट्रीय जल नेटवर्क के निर्माण को तेज करने का आग्रह किया गया है। चीन देश की महत्वपूर्ण रणनीति के आधार पर कई प्रमुख मोड़ और जल निकासी परियोजनाओं की योजना और निर्माण को वैज्ञानिक तौर पर बढ़ावा देगा। इसके साथ ही महत्वपूर्ण नदियों पर हरित पारिस्थितिक गलियारों का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय जल नेटवर्क के मुख्य कंकाल और मुख्य धमनियों के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। राष्ट्रीय जल नेटवर्क जन संसाधन से जुड़ी तीन बड़ी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पहला, समय और स्थान में जल संसाधनों के असमान वितरण को हल किया जाता है और ज्यादा विस्तृत दायरे में स्थानिक संतुलन हासिल किया जाता है। दूसरा, पारिस्थितिक पर्यावरण का संरक्षण और हरित विकास हासिल हुआ है। जबकि तीसरा, प्रभावी ढंग से बाढ़ और सूखी जैसी आपदाओं की रोकथाम की जाती है और उच्च मानकों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा बाधा का निर्माण किया जाता है। उधर 26 मई को 12,000 टन का अपतटीय तेल और गैस प्लेटफॉर्म बोचोंग 19-6 गैस क्षेत्र का केंद्र प्लेटफॉर्म छिंगताओ में तैयार हुआ। प्लेटफॉर्म से जुड़े कई तकनीकी नवाचार हासिल किए गए हैं। इस साल इसका इस्तेमाल शुरू होने के बाद यह पेचिंग, थियनचिन, हबेई और बोहाई रिम क्षेत्र के लिए स्थिर और विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा और रासायनिक उत्पाद प्रदान कर सकता है। बताया जाता है कि बोचोंग 19-6 गैस क्षेत्र का केंद्र प्लेटफॉर्म एक बहुकार्यात्मक एकीकृत अपतटीय तेल और गैस प्लेटफॉर्म है, जो उत्पादन और जीवन को एकीकृत कर सकता है। प्लेटफॉर्म 32 मीटर ऊंचा, 65 मीटर लंबा और 56 मीटर चौड़ा है, जिसका अनुमानित क्षेत्रफल लगभग 9 मानक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार का है। उधर भारत के मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय पार्क में 25 मई को और 2 चीता शावकों की मौत हो गई। इस तरह इस हफ्ते 3 चीता शावकों की मौत हो चुकी है। कूनो नेशनल पार्क में ज्वाला नाम की मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया था। इनमें से एक की मौत 23 मई को हुई। यह मादा चीता भारत के पुनः चीता इंट्रोड्यूस कार्यक्रम के तहत पिछले साल नामीबिया से स्थानांतरित चीतों में से एक है। 3 दिन में 3 चीता शावकों की मौत का मुख्य कारण राष्ट्रीय उद्यान में अत्यधिक मौसम और निर्जलीकरण को बताया गया है। उधर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। चौथे शावक यानी अकेले जीवित शावक को अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। वन विभाग के मुख्य संरक्षक JS चौहान ने मीडिया को बताया कि चौथे शावक का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, वह भी कमजोर, कम वजन और निर्जलीकरण का शिकार हुआ है। उधर अंडर 23 पुरुष फुटबॉल एशिया कप यानी पेरिस ओलंपिक पुरुष फुटबॉल कप क्वालिफाइंग प्रतियोगिता के एशिया क्षेत्र के पहले दौर ग्रुप मैचों के ड्रॉ के परिणाम 25 मई को निकले। चीन, UAE, भारत और मालदीव जी ग्रुप में रखे गए हैं। उधर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने 24 मई को कहा कि 22 मई को यूक्रेनी सशस्त्र कर्मियों ने रूस के बेलागरोद क्षेत्र में कोजिंका चौकी के क्षेत्र पर आक्रमण किया है। रूसी सशस्त्र बलों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें हरा दिया है। वहीं यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक किरिलो बुडानोव ने सोशल मीडिया पर कहा कि यूक्रेनी सेना ने पर्याप्त कर्मियों और हथियारों व उपकरणों को जमा कर लिया है और कब्जे वाले क्षेत्रों को पुनः हासिल करने के लिए ऑपरेशन जल्द ही शुरू होगा।